आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत बनाने की समत पहले कदम के तौर पर गांवों को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया है। बीजेपी ने अपने लोकसभा अरकान पार्लियामेंट को आज ऐवान जेरी में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी की है। पेंशन फंड इंजबाती और तरक्याती अथॉरिटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अमली शक्ल देने के लिए जाब्तों को नोटिफाई कर दिया है। आसाम सरकार ने गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में सभी दुकानों और कारोबारी इदारों को 24 घंटे खुला रखने की इजाजत देने का फैसला किया है। क्रिस्टी कोवेंट्री को बैन अल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी की पहली खातून सदर मुंतखब किया गया है। और स्क्वाश में आज चेन्नई में SRFI इंडियन टूर 2025 में खवातीन के फाइनल में भारत की आकांक्षा सालुंखे का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी अनहत सिंह से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत बनाने की समत पहले कदम के तौर पर गांवों को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने वीडियो पैगाम के जरिए गुजरात के भरवाड़ समाज से वाबस्ता बावलियाली धाम के प्रोग्राम में यह बात कही। जनाब मोदी ने इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत को उजागर किया और मुल्क की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर सबका प्रयास के बारे में लाल किले से दिए गए अपने बयान को दोहराया।
भारत ने विकसित भारत बनावानो एनो प्रथम पड़ाव मारी दृष्टिए अपना गामडाओने विकसित करवा जोईए। आजे प्रकृति अने पशुधन नी सेवा ए तो आपणो सहज धर्म छे।
जनाब मोदी ने आगे बढ़ने की खातिर जदीदियत के जरिए बिरादरी को बाख्तियार बनाने के लिए तालीम की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने बिरादरी के बच्चों, खासतौर पर बेटियों पर जोर दिया कि वो तालीम के शोबे में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें और ज्यादा मजबूत मुआशरे के लिए अपना रोल अदा करें। जनाब मोदी ने खिदमत के लिए बिरादरी के अज़्म, फितरत के लिए मोहब्बत और गाय के तहफ़्फ़ुज़ के तई अहद के ताल्लुक से भरवाड़ बिरादरी की लगन को सराहा। जनाब मोदी ने मवेशियों में खुर और मुंह की बीमारी की रोकथाम के लिए मवेशियों को मुफ्त टीका लगाने के सरकार के प्रोग्राम को उजागर किया और बिरादरी पर जोर दिया कि वो अपने मवेशियों को बाकायदगी से टीका लगाने को यकीनी बनाएं। बीजेपी ने अपने लोकसभा अरकान को एक व्हिप जारी करके उन्हें आज ऐवान-ए-ज़ेरी में मौजूद रहने की हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक मरकजी बजट के ताल्लुक से मुख्तलिफ वजारतों के मुतालबात ज़र पर गुलेटिन जाब्ते के इतलाक के मद्देनजर यह व्हिप जारी की गई है। पेंशन फंड इंजबाती और तरक्याती अथॉरिटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अमली शक्ल देने के लिए जाब्तों को नोटिफाई कर दिया है। इससे कबल हुकूमत ने एनपीएस के दायरे में आने वाले मरकजी सरकार के मुलाजमीन के लिए इस साल जनवरी में यूपीएस नोटिफिकेशन जारी किया था। इन जाब्तों का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
इन जाब्तों के तहत मरकजी सरकार के मुलाजमीन को तीन जुमरों में रखा जा सकेगा। पहले जुमरे में मरकजी सरकार के वो मुलाजमीन आएंगे जो 1 अप्रैल 2025 को पहले से मुलाजमत में थे और ये एनपीएस के दायरे में हैं। दूसरे जुमरे में मरकजी सरकार की खिदमात में भर्ती किए गए वो मुलाजमीन शामिल होंगे जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद मुलाजमत में आएंगे। तीसरे जुमरे में मरकजी सरकार के वो मुलाजमीन होंगे जो एनपीएस का हिस्सा थे और 31 मार्च 2025 को या उससे पहले रिटायर हो गए थे, रजाकाराना तौर पर रिटायर हुए हैं या बुनियादी जाब्ते 56(i) के तहत रिटायर हुए हैं और यूपीएस के अहल हों। इन सभी जुमरों के मरकजी सरकार के मुलाजमीन के लिए इंदराज कराने और दावों से मुतालिक फॉर्म 1 अप्रैल से वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। मुतालिका मुलाजमीन खुद जाकर भी ये फॉर्म जमा करा सकते हैं। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
कॉमर्स और सनतों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने $4.5 खरब की खिदमात की बरामद के निशाने को हासिल करने की खातिर सरकार और आईटी शोबे के इज्तिमाई अज़्म की जरूरत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में नैसकॉम की आलमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने यह एतमाद जाहिर किया कि साल 2025-26 में भारत की खिदमात शोबे की बरामदात सामान और अशिया की बरामदात से तजावुज कर सकती हैं और इसमें आईटी शोबे का अहम रोल रहेगा। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि इस साल खिदमात शोबे की बरामदात 3 खरब $80 अरब से लेकर $3.85 अरब के दरमियान रहने की उम्मीद है और इस तरह आलमी सतह पर भारत की मौजूदगी को मजीद तकवीत मिलेगी। उन्होंने आईटी, सियाहत, बिजनेस अकाउंटिंग और माली खदमात के शोबों में एमएसएमई इदारों के बढ़ते हुए रोल को तस्लीम किया और मस्कूरा शोबे में रोजगार के बहुत ज्यादा मौके पैदा होने के इम्कान को उजागर किया।
We are looking at least anywhere between 380 to 385 billion dollars of export of services in the year 25-26, ending 31st March 26. You should overtake merchandise exports next. And IT will have to be at the forefront in IT, in tourism, in several business accounting, financial services. If I'm looking at the overall basket also, MSME sector is showing great promise.
छत्तीसगढ़ में कल दो अलग अलग झड़पों में 30 माओनवाज मारे गए। बस्तर डिवीजन के बीजापुर जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को यह खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी कि बीजापुर और दांतेवाड़ा जिले के सरहदी इलाके में वाके जंगल में माओनवाज मौजूद हैं। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम तलाश की कार्रवाई के लिए वहां गई और माओनवाजों के साथ तसादुम हुआ। झड़प के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को 26 माओनवाजों की लाशें मिल गई हैं। इस तसादुम में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान शहीद भी हुआ। इधर रियासत के कांकेर जिले में भी एक कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गोलीबारी में 4 माओनवाज मारे गए। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आसाम सरकार ने फैसला किया है कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में सभी दुकानों और कारोबारी इदारों को 24 घंटे खुला रखने की इजाजत दी जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि रियासती काबीना ने एक पॉलिसी को मंजूरी दी है जिसके तहत राजधानी और रियासत के दो अहम कस्बों में शराब की दुकानों को छोड़कर दीगर सभी दुकानों और कारोबारी इदारों को 24 घंटे काम करने की इजाजत होगी। उन्होंने बताया कि दीगर शहरों में सभी दुकानें रात 2 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी जबकि देही इलाकों में रात 11 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। अलबत्ता कारकुन ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे काम करेंगे, लिहाजा 24 घंटे कारोबारी इदारे खुले रखने के लिए कारकुनों के वास्ते 3 शिफ्ट होंगी। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि 24 घंटे दुकानों को खुला रखने की इजाजत देने के फैसले से छोटे कारोबारी अफराद को मदद मिलेगी और काम के औकात बढ़ने से मुलाजमत के मजीद मौके पैदा होंगे। हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट हमले किए हैं। यह गजा में इसराइल की जानिब से फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जाने के बाद से पहली जवाबी कार्रवाई है। इसराइली दिफाई अफवाज ने कहा है कि एक रॉकेट को बीच में ही रोक दिया गया जबकि दीगर दो गैर रिहायशी इलाकों में गिरे। इस दौरान गजा में हमास की वजारत सेहत ने खबर दी है कि आधी रात के बाद से इसराइली फिजाई हमलों में कम अज कम 85 फिलिस्तीनी हलाक हुए हैं जिसके बाद मंगल से हलाक होने वालों की तादाद 500 से ज्यादा हो गई है। इसराइली हुकूमत का दावा है कि हमास की कैद में अब भी 59 यरगमाल बनाए गए अफराद हैं जिनमें से 24 के बारे में यह ख्याल है कि वो जिंदा हैं। इस दौरान अक़वामे मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि लड़ाई के फिर से शुरू होने से यरगमाल बनाए गए अफराद समेत सभी शहरियों को खतरा लाहिक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के साथ जेर जमीन कमयाब मादनियात से मुतालिक मुआहदे पर जल्द दस्तखत करेंगे। व्हाइट हाउस में नामनिगारों से खिताब करते हुए ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अमरीका में अहम मादनियात की पैदावार को बढ़ावा देने की खातिर एक एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर भी दस्तखत किए हैं। सदर ट्रंप ने रूस यूक्रेन लड़ाई में जंगबंदी के ताल्लुक से पुरउम्मीदी का इजहार किया। उन्होंने नामनिगारों से कहा कि इन दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के साथ उनकी बातचीत के बाद कयाम अमन के समझौते के लिए उनकी कोशिशें मुस्बत साबित हो रही हैं।
I also signed an executive order to dramatically increase production of critical minerals and rare earths. It's a big thing in this country, and one of the things we are doing is signing a deal very shortly with respect to rare earths with Ukraine, which they have a tremendous value in rare earth, and we appreciate that. And we spoke yesterday with, as you know, President Putin and President Zelensky, and we would love to see that come to an end, and I think we're doing pretty well.
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालीम के महकमे को बंद करने के अमल को शुरू करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए हैं। ये ऑर्डर स्कूल पॉलिसी कंट्रोल को सूबों और मकामी बोर्ड्स में मुंतकिल करने के लिए तैयार किया गया है जिसके सबब आजाद ख्याली के साथ तालीम की वकालत करने वालों के दरमियान तशवीश पैदा हो गई है। کل وائٹ ہاؤس میں دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے محکمے کی یہ کہتے ہوئے تنقید کی کہ گزشتہ چار دہائیوں میں اخراجات میں بڑے پیمانے پر اضافے کے باوجود وہ نظام تعلیم کو بہتر کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج مشرقی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اڈیشا، ودربھ، آسام، میگھالیہ، تلنگانہ اور بہار میں تیز ہواؤں اور ژالہ باری کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق مغربی اور مشرقی اتر پردیش، مراٹھواڑہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور سکم میں بھی آج تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل تک اروناچل پردیش کے کچھ مقامات پر شدید بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ زمبابوے کی کرسٹی کوونٹری کو بین الاقوامی اولمپک کمیٹی آئی او سی کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ وہ آئی او سی کی تاریخ میں پہلی خاتون صدر بنی ہیں۔ کل یونان کے کوسٹا ناورینو میں آئی او سی کے 144ویں اجلاس میں 41 سالہ کرسٹی کو چنا گیا۔ انہیں 97 ووٹوں میں سے پہلے دور میں 49 ووٹ ملے جو اکثریت کے لیے درکار تھے۔ محترمہ کوونٹری آئی او سی کے نویں صدر تھامس بیک کی جگہ ذمہ داری سنبھالیں گی جن کی 12 سالہ مدت کار 23 جون کے بعد ختم ہو جائے گی۔ بین الاقوامی کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ نے محترمہ کرسٹی کوونٹری کو آئی او سی کی پہلی خاتون صدر بننے پر مبارکباد دی ہے۔ جناب شاہ آئی او سی کے 144ویں اجلاس میں موجود تھے۔ سکواش میں آج دوپہر چنئی میں ایس آر ایف آئی انڈین ٹور 2025 کے خواتین کے فائنل میں بھارت کی اکانشا سالونکھے کا مقابلہ اپنی ہم وطن کھلاڑی انہت سنگھ سے ہوگا۔ یہ میچ دوپہر 2:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اعلی درجے کی کھلاڑی اکانشا نے اپنی ہم وطن جوشنا چنپا کو 11-5، 11-7، 11-7 سے ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ پکی کی ہے۔ 17 سالہ انہت سنگھ نے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کی ہیلے وارٹ کو 11-6، 11-3، 11-4 سے شکست دی تھی۔ مردوں کے زمرے میں آج بھارت کے ویر چوٹرانی کا فرانس کے کھلاڑی سے خطابی مقابلہ ہوگا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے سنکر سبرامنین سوئٹزرلینڈ کے بازل میں سوئس اوپن چیمپئن شپ کے مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ عالمی درجہ بندی میں 64ویں پوزیشن کے کھلاڑی سبرامنین نے ڈینمارک کے عالمی نمبر 2 کھلاڑی اینڈرس اینٹونسن کو 18-21، 21-22، 21-5 سے ہرایا۔ اب آج کوارٹر فائنل میں ان کا مقابلہ فرانس کے کرسٹو پوپوف سے ہوگا۔ خواتین کے ڈبلز میں بھارت کی تریسا جولی اور گایتری گوپیچند کی جوڑی بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔
شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ چھتیس گڑھ کے بیجاپور اور دانتےواڑہ میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 22 نکسلیوں کے ہلاک ہونے اور ایک جوان کے شہید ہونے کی خبر کو روزنامہ ملا، راشٹریہ سہارا، پرتاپ سمیت تقریباً سبھی اخباروں نے پہلے صفحے کی سرخی بنایا ہے۔ ساتھ ہی روزنامہ ملاپ نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے ذریعے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کامیاب آپریشن انجام دینے پر جوانوں کو مبارکباد دیے جانے کی خبر کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے یوکرین میں جزوی جنگ بندی پر اتفاق کیا، اس خبر کو روزنامہ انقلاب، ہندوستان ایکسپریس اور ملاپ نے سرخی بنایا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یوکرین سے متعلق امریکہ روس معاہدے کا خیر مقدم کیا۔
اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے وکست بھارت بنانے کی سمت پہلے قدم کے طور پر گاؤں کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بی جے پی نے اپنے لوک سبھا ارکان پارلیمنٹ کو آج ایوان زیری میں موجود رہنے کے لیے وپ جاری کی ہے۔ پینشن فنڈ انضباطی اور ترقیاتی اتھارٹی نے یونیفائیڈ پینشن اسکیم کو عملی شکل دینے کے لیے ضابطوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ آسام سرکار نے گوہاٹی، ڈبروگڑھ اور سلچر میں سبھی دکانوں اور کاروباری اداروں کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرسٹی کوونٹری کو بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کی پہلی خاتون صدر منتخب کیا گیا ہے۔ اور آج اسکواش میں چنئی میں ایس آر ایف آئی انڈین ٹور 2025 میں خواتین کے فائنل میں بھارت کی اکانشا سالونکھے کا مقابلہ اپنی ہم وطن کھلاڑی انہا سنگھ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔